मायाजवनिकाच्छन्नम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। Being beyond the range of limited sense perception, you are eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Purport. In the Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna affirms that less intelligent persons mistake him to be an ordinary man like us, and thus they deride him. The same is confirmed herein by Queen Kunti. The less intelligent persons are those who rebel against the authority of the Lord. Such persons are known as asuras. The asuras cannot recognize the Lord's authority. And the Lord himself appears amongst us as Rama, Narsingha, Varaha, or in his original form as Krishna. He performs many wonderful acts which are humanly impossible. As we shall find in the 10th canto of this great literature, Lord Sri Krishna exhibited his humanly impossible activities even from the days of his lying on the lap of his mother. He killed the Putana witch, although she smeared her breast with poison just to kill the Lord. The Lord sucked her breast like a natural baby, and he sucked out her very life also. Similarly, he lifted the Govardhan hill just as a boy picks up a frog's umbrella, and stood several days continuously just to give protection to the residents of Vrindavan. These are some of the superhuman activities of the Lord described in the authoritative Vedic literatures like the Puranas, Itihasas, histories and Upanishads. He has delivered wonderful instructions in the shape of the Bhagavad Gita. He has shown marvelous capacities as a hero, as a householder, as a teacher and as a renouncer. He is accepted as the Supreme Personality of Godhead by such authoritative personalities as Vyasa, Devala, Asita, Narada, Madhva, Shankara, Ramanuja, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravarti, Bhakti Siddhanta Saraswati and all other authorities of the line. He himself has declared as such in many places of the authentic literatures. And yet there is a class of men with demonic mentality who are always reluctant to accept the Lord as the Supreme Absolute Truth. This is partially due to their poor fund of knowledge and partially due to their stubborn obstinacy, which result from various misdeeds in the past and present. Such persons could not recognize Lord Sri Krishna even when he was present before them. Another difficulty is that those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as a Supreme Lord. Such persons are like the modern scientists. They want to know everything by their experimental knowledge. But it is not possible to know the Supreme Person by imperfect experimental knowledge. He is described herein as adhokshaja, or beyond the range of experimental knowledge. All our senses are imperfect. We claim to observe everything and anything, but we must admit that we can observe things under certain material conditions only, which are also beyond our control. The Lord is beyond the observation of sense perception. Queen Kunti accepts this deficiency of the conditioned soul, especially of the woman class who are less intelligent. For less intelligent men, there must be such things as temples, mosques or churches, so that they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about him from authorities in such holy places. For less intelligent men, this beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship, which are required to raise the standard of spiritual attributes for the mass of people. For less intelligent persons, bowing down before the authority of the Lord, as generally done in the temples, mosques or churches, is as beneficial as it is for the advanced devotees to meditate upon him by active service. Kunti Maharani अपनी प्रार्थना करते हुए कहती है कि क्योंकि आप भौतिक इंद्रियों से परे हो, आप कभी भी अपने माया से ढके जाने के कारण आप ऐसे मूढ़ व्यक्तियों को प्रकट नहीं होते हो जिस तरीके से एक नट जब नाटक पर रंगमंच पर आता है तो पहचाना नहीं जाता है। रूपा जी तात्पर्य समझाते हैं कि भगवद गीता में खुद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ व्यक्ति लोग उन्हें एक मामूली व्यक्ति समझ बैठते हैं। यही कुंती माता भी ये कह रही है यहां। कम बुद्धि वाले लोग भगवान के जो नियंत्रण सत्ता है उसको नकारते हैं, इसलिए इनको असुर कहा जाता है। असुर भगवान की जो नियंत्रण करता है उसे स्वीकार नहीं करते हैं। जब भगवान राम नरसिंह इत्यादि अलग अलग रूप में या खुद कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं तो ऐसे अद्भुत लीलाएं करते हैं जो दशम स्कंध में बताया गया है कि कैसे उन्होंने पूतना को मारा जब वो छोटे से बच्चे थे, बालक थे, और इसी तरह से गोवर्धन को उठाया और 7 दिन और 7 रात तक उठाए खड़े रखे। इस तरीके से ऐसे अद्भुत कर्म भगवान ने किया है और इसका साथ इनका वर्णन पुराण इतिहास उपनिषदों में है। इसके अलावा भगवद गीता जैसे दर्शन शास्त्र भी उन्होंने दिया है और हर एक स्थिति में जब वो गृहस्थ थे या एक शिक्षक के रूप में या एक परम त्यागी के रूप में हमेशा वो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। और इनको भगवान माने हैं व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, चैतन्य, जीव गोस्वामी, विष्णु, चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सारे आचार्य जो हैं सभी ने इन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माना है। और वो खुद अपने आप को ऐसे बताए हैं वेदों में। फिर भी ऐसे एक आसुरिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। ये उनके कम बुद्धि के कारण है और दूसरे उनकी ऑब्स्टिनेसी, स्टबर्न ऑब्स्टिनेस, जिद्दी जो प्रवृत्ति है उनकी। इसलिए जो पाप कर्म के कारण अभी और पिछले जन्मों में इसलिए होता है, ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाते हैं हालांकि वो सामने ही क्यों ना हो। दूसरी तकलीफ ये है कि जो लोग अपनी इंद्रियों पर ज्यादा निर्भर करते हैं होते हैं ऐसे लोग पहचान नहीं पाते हैं। ये आजकल के जो वैज्ञानिक हैं ये सब कुछ अपने इंद्रियों से जानना चाहते हैं पर भगवान ऐसे अपूर्ण इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते। इसीलिए यहाँ इनका नाम है अधोक्षज, जो अपने भौतिक इंद्रियों से परे हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम कहते हैं कि हम सब कुछ सही तरीके से देख रहे हैं, हमें मानना चाहिए, जानना भी चाहिए कि हम सिर्फ किसी एक भौतिक स्थिति में हमसे देख सकते हैं और वो ये स्थितियां भी हमारे नियंत्रण से परे हैं। तो वो भौतिक इंद्रियों से परे हैं और महारानी कुंती जो है वो ये एक बद्ध जीव की जो कमियां हैं इसे स्वीकार करती है, खास करके औरतों जो कम बुद्धिमान माने गए। कम बुद्धिमान लोगों के लिए ऐसे चीज मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि जरूरत, गिरजाघर की जरूरी है ताकि भगवान की जो नियंता है इसे वो स्वीकार करें और ऐसे पवित्र स्थान में आकर उनके गुणगान का श्रवण करें। कम बुद्धि वाले लोगों के लिए यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है और ये बहुत जरूरी है। सिर्फ मूर्ख व्यक्ति लोग ऐसे जो मंदिर इत्यादि हैं इसको नकारते हैं। जो आध्यात्मिक जन साधारण की आध्यात्मिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, कम बुद्धि वालों के लिए भगवान की जो नियंता है उसे स्वीकार करना और प्रभुत्व को स्वीकार करना, जिस तरीके से मंदिर गुरुद्वारा इत्यादि में किया जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है। और ये इतना ही जरूरी है कम जो शुरुआत भक्तों के लिए, नौसुखिया भक्त के लिए, जितना ये जरूरी है ऊंचे भक्त के लिए कि उन पर ध्यान करते, अपने सेवा के द्वारा उन पर हमेशा ध्यान करें। तो ये कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं, ये अपने आप में ये बहुत ही माननीय है। और सारे जो परम परमहंस वैष्णव हैं, ये भी हमेशा इन प्रार्थनाओं को गाते रहते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना साक्षात्कार के स्तर पर महान भक्तों ने ये रचा है, और इसीलिए ये पूर्ण रूप से सिद्धांत, सही सिद्धांत में होने के कारण ये हमें सिखलाता है कि किस भाव से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे परसों नरोत्तम दास ठाकुर के आविर्भाव दिवस में नरोत्तम दास ठाकुर की इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, और हर एक जो प्रार्थनाएं हैं, हर एक जो कीर्तन भजन है, ये अपने आप में एक ग्रंथ के समान है, क्योंकि पूर्ण सिद्धांत दे रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ कुंती महारानी बहुत सुंदर से प्रार्थना की है, जो मुख्य रूप से तीन तरीके के होते हैं। एक प्रार्थना वो जो भगवान का गुणगान करता है, दूसरा वो जो अपने को दैवनी मानता है, और तीसरा कि उस स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा करता है। ये श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि संप्रार्थनात्मिका, दैनवोधिका और लालसामयी। तो एक में हम भगवान को मुख्य रूप से इन प्रार्थनाओं में एक भगवान की गुणगान कर रहे हैं कि आप कितने महान हो, आप अधोक्षज हो, आप तीन गुणों से परे हो, आप महान हो। और दूसरे में दैनवोधिका कि मैं इतना तुच्छ हूं। सब प्रार्थना में तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा व्रजेंद्र कुमार, तुम सर्वेश सर्वेश्वरेश्वरा, जैसे हमने कल पढ़ा कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्षम, इस तरीके से उनकी गुणगान करना कि जो कुछ भी है सचमुच में आपके अलावा और कुछ है ही नहीं, परम सत्य आप ही सब कुछ हो। और दूसरा है मौसमा पति तबु न पाई बेहार कि मैं इतना तुच्छ हूं। बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं, जहां कहते हैं कि मैं इतना पापी हूं, मैं इतना तुच्छ हूं, मेरे अंदर पर दुख सुखी और पर सुख दुखी ऐसी मेरी स्थिति है। हमारा जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेशा। तो अपने को सचमुच में जानते हैं, नम्रता के कारण वो समझ जाते हैं हमारी स्थिति क्या है। तो ऐसे बद्ध जीवों का एक रूप लेते हुए अपने को तुच्छ मानना, ये दूसरा स्तर है प्रार्थना का। और तीसरा सिर्फ उतना नहीं कि मैं जो विष्ठा में पड़े कीड़े से भी तुच्छ हूं, इतना मानना ही नहीं, पर ये इच्छा रखना कि कब वो दिन आएगा जब मैं उस स्थिति को प्राप्त करूंगा आपकी अहेतु की कृपा से। यानी समझना कि मेरे अंदर कुछ योग्यता नहीं है। तो एक उनकी महानता को स्वीकार करना, कबे गौरव ने सुर धुनि तटे हा राधे हा कृष्ण बोले, कि कब आएगा वो दिन, कांदिया बेरा वो देह सुख चाड़ी नाना लता तरु तोले, कब कब उस स्थिति को मैं प्राप्त करूंगा, कब ऐसा स्थिति आएगा जब गौरंग के नाम लेने से मेरे सारे शरीर पुलकित हो जाएंगे और हरि हरि बोलने पर मेरे आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। तो ये तीन अलग अलग स्तर के प्रार्थनाएं हैं। और हाँ, देखते हैं इन प्रार्थनाओं में ये तीन भाव अपने आप आ जाता है, और इसी के अंदर यही सार है, ये जानना कि भगवान परमेश्वर हैं, हम उनके नित्य दास हैं, उनके अलावा हमारा अलग अस्तित्व ही नहीं है, और इसीलिए उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। और वो हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, किस दिन आएगा जब हम उनकी कृपा से ही हम वापस उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो सचमुच में ये सार है सारे शास्त्रों का और सारे प्रार्थनाओं का। और
ये प्रार्थना जब हम करते हैं तो जितना उसमें हम मन लगाते हैं तो हम उतनी हमारी शुद्धिकरण होती है, और हमारी जो अभी जो चेतना है, जो अभी ईर्ष्या से भरा हुआ है भगवान के प्रति, जिसके कारण हम भगवान को समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। हमारा जो लाइन ऑफ थॉट, जैसे जैसे इसीलिए हम अपने प्रार्थना करते हैं, पर साथ साथ में हमेशा ब्रह्म संहिता और हम गुरु वंदना करते हैं, ऐसे आचार्यों की लिखी हुई जो प्रार्थनाएं हैं, ये सब प्रार्थना ही है जो हम सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, जब गुरु वंदना करते हैं, श्री गुरु चरण पद्मान रुतम दास ठाकुर की, गुरु की महानता जो उनके प्रतिनिधि है, और इस तरीके से जो भी प्रार्थना है, पूरे जीवन हमारा एक प्रार्थना है, भगवान के गुणगान करना, अपने को तुच्छ समझना और वो उस सिद्धि की लालसा रखना। तो यहाँ इन सुंदर प्रार्थनाओं को सचमुच में, ये जो इतने 18-20 श्लोक हैं, इसे अगर हम नियमित रूप से ये श्रवण करते रहे और गाते रहे। ये प्रथा होती थी कि लोग पहले सुबह से शाम तक कुछ भी कीर्तन करते रहना, कुछ भी गाते रहना, ये प्रवृत्ति अंदर होती है हर एक की, कुछ गाना, कुछ म्यूजिक करना, ऐसे कुछ बोलते रहना, कुछ ऐसे किसी सुंदर सुंदर श्लोक में या कुछ कीर्तन करना। पर ये प्रवृत्ति पिछले जमाने में ऐसे ही था कि बस जब हम लोग सुनने जाते थे इसको, अदर अदर बड़े मधुर रूप से इसको सुनाया करते थे, और वो प्रवृत्ति से शुद्धिकरण भी होता रहता था। तो इस तरीके से इस प्रार्थना में ये हमको जितना होना कोशिश करना चाहिए, ये गजेंद्र मोक्ष, ये तैयारी, इतने सुंदर प्रार्थना है एक एक भी, अगर इसको हम नित्य नियमित रूप से श्रवण करते रहे और दोहराते रहे तो ये बहुत ही शुद्धि होता है। तो यहाँ माया जवनिका छन्नम, कुंती देवी यहाँ बता रही है, जो भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तः मम भूत महेश्वरम, कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ व्यक्ति हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो मुझे मानुषीं तनुमाश्रितम, जब एक मुझे एक मामूली व्यक्ति समझते हैं कम बुद्धि के कारण, ड्यू टू पुअर फंड ऑफ नॉलेज, प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं। और माया तनुमाश्रितम परम भाव अजानम, तो क्यों, क्योंकि मेरे असली स्थिति को नहीं जान पाते हैं। परम भाव अजानम, तो क्या है असली स्थिति, मम भूत महेश्वरम, महाईश्वर तुम्हें सर्वेश्वरेश्वरा, इसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, सब ईश्वरों के ईश्वर, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो मम भूत महेश्वरम, ये स्थिति नहीं जानने के कारण लोग मुझे समझ नहीं पाते। ये क्योंकि हम एक बार जान जाएंगे भगवान कौन है तो हम उनके शरण जाएंगे, और शरण इसी जब जाते हैं तभी हम इन तीन गुणों से परे भी निकल सकते हैं। तो हम शरण नहीं जाते क्योंकि अभी हम इन तीन गुणों में बंधे हुए हैं, और इस तीन गुणों से परे निकलने के लिए अपने हम नहीं निकल सकते। तीन गुणों में आने के कारण, हमारी ईर्ष्या के कारण हम आए, और अभी इन तीन गुणों से ढके हुए हैं, और जब तक हम इन तीन गुणों से ढके हुए हैं हर एक चीज को इसी चीज से हम देखते हैं, और भगवान को भी एक तीन गुणों में क्लासिफाई कर देते हैं कि यही है वो। और इसीलिए जब वो इतना ऐसे कर्म करते हैं, ऐसा भोग करते हैं, तो हम उसको सहन नहीं कर पाते ईर्ष्या के कारण। साधारणतः लोग इसीलिए, जैसे हम देखते हैं शंखासुर की कथा है, भगवान जब एक बार बलराम और कृष्ण दोनों गोपियों के साथ, ये रासलीला से पहले जब विद्याधर का मोक्ष हो जाता है, शिवरात्रि के लिए जाते हैं एक बार, और विद्या जब एक सांप आकर नंद महाराज को निगलने लगता है और बाद में उसकी उद्धार हो जाती है, उसके बाद तुरंत जब वापस आते हैं तो वृंदावन में
तो गोपियों के साथ रमण करते रहते हैं। और उस समय शंखासुर जब देखता है, जो कुबेर का एक दोस्त होता है, वो हानी बहुत उच्च कुल में है पर आसुरिक प्रवृत्ति का होता है, और जब देखता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बहुत आनंद ले रहे हैं, तो उसके हृदय में ईर्ष्या हो जाती है। और वो भी बोलता है, मैं क्यों ये ग्वाले बाले क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं तो इतना शक्तिशाली हूं, मैं कुबेर का दोस्त हूं, यानी बहुत सारा इन्फ्लुएंस है मेरा, इतना पैसा है मेरा, ये ग्वाल बालों के साथ ये क्यों ये गोपियां जा रही हैं। और उन्हें उठा कर ले जाता है। तो इस तरीके से यही हमारी स्थिति है, हम सब छोटे मोटे शंखासुर हैं किसी न किसी हद तक, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी चीज पर हम इंद्र बनना चाहते हैं, ईश्वर बनना चाहते हैं। जैसे महाराज एक दिन प्रवचन में बता रहे थे, भक्ति में आने पर भी थोड़ी बहुत कम से कम इतना चीज जो है इसमें हमारा प्रभुत्व जमाना चाहते हैं। तो ये जानना कि सचमुच में सब कुछ जो है ये भगवान की है और उनकी शरण जाना। हालांकि ये फिलॉसफी हम बहुत सुनते हैं और बहुत ही आसान है समझने में, पर इतना जानते हुए भी हम शरण नहीं जाते, और इसीलिए इस माया के जो तीन गुणों की जो माया बांध दी है, इससे हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। वही सार है कि ये जानना कि उनकी शरण में जाएंगे तभी दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इसे पार कर पाना मुश्किल है। पर मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्तिते, उनकी शरण जाना, पर वही चीज हम नहीं करना चाहते हैं बस। नमाम प्रपद्यन्ते दुष्कृतिनः, जो दुष्कृति लोग हैं यानी पाप कर्म के कारण पिछले और इस जन्म में, हम शरण नहीं जाना चाहते। मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति लोग, नराधमा जिनको संस्कार नहीं है और नर में सबसे अहम है, माया अपहृत ज्ञाना, हालांकि बहुत बुद्धि है पर अपनी इंद्रियों से वो जानना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद यहां समझाते हैं, माया ज्ञाना, माया के कारण इस भ्रम में आ जाते हैं वो कि हमारे आंख से हम जो देख सकते हैं वही सही है। और आसुरम भावम आश्रिताया, ऑब्स्टिनेसी, जो जिद्दी है, ये सब जानते हुए भी फिर भी नहीं आते असुर। मालूम है जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष की पत्नी गुजर जाने पर बड़े बड़े प्रवचन दे रहे थे, विष्णु ही सब कुछ है, हमें स्वीकार करना पड़े, ये वो सब कुछ, पर जब अपने जीवन में आता तो बहुत जिद्दी है वो, नहीं उसे खत्म करके रहेंगे हम। तो इस तरीके से यह असुरी भाव आश्रिता तो हम कहते हैं, पर सचमुच में इसे साक्षात्कार करना बड़ा मुश्किल है। तो मूढ़ा, यहां चार प्रकार के लोग जो शरण में नहीं जाते हैं, इसकी थोड़ी बहुत हमारे अंदर भी है। ये मूढ़ा मतलब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं गधे का, जो इतना काम करते रहता है कि वो सोचता ही नहीं है कि किसके लिए वो काम कर रहा है। इसी तरह से हम भी देखते हैं, हम इतने कभी कभी हम लक्ष्य ही भूल जाते हैं, ये गधा ये भी नहीं देखता है, इतना बिजी रहता है धोबी के घाट जाने फिर वापस आने, फिर जाने फिर आने, कि बगल में घास है देखता नहीं वो। इस तरीके से लोग इतने सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं, कहीं कहीं तीन कहीं चार जगह इत्यादि, पर थोड़े समय के लिए ठंडे दिमाग से ये भी नहीं सोचते हैं कि किस लिए कर रहा हूं ये सब, किस व्यक्ति के लिए मैं कर रहा हूं, किन लोगों के लिए कर रहा हूं, उनके साथ मैं ना समय गुजार रहा हूं कुछ नहीं, पर ऐसे ही करते जा रहा हूं। तो ये मूढ़ा कभी कभी ये नहीं जानते हैं, रूपा जी यहां बताते हैं कि विच मास्टर एम आई, हु इज माई मास्टर, हु एम आई सर्विंग, किसकी सेवा कर रहे हैं वो कुछ नहीं मालूम, वही भूल जाते हैं वो किनके लिए सेवा कर रहे हैं। तमाम दुष्कृतो मूढ़ा, ये मूढ़ है, कम बुद्धि के कारण सोचते नहीं, ठंडे दिमाग से अगर सोचते तो पता चलता कि जिसलिए कर रहा हूं उसको तो वो तो ठीक है। इतने सेवा करते हैं इंद्रियों के दास, ठीक है, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भी उनका समय नहीं रहता है। संडे, उनको एक संडे मिलता है और संडे में भी थोड़ा बोलते हैं कि अगर थोड़ा ज्यादा कमा लो तो सुख रहूंगा, पर वो संडे में कम से कम इंद्र तृप्ति करने को भी समय नहीं है उनको। इंद्रियों के दास हैं पर उसे तृप्त करने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि उनको चिंता है कि अगर नहीं करूंगा तो फिर कौन होगा। तो इस तरीके से वो नहीं जानते कि किसकी सेवा कर रहे हैं वो। तमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, अधम, अधम लोग, यानी मनुष्य का जीवन मिला है पर एकदम बिना संस्कार के कारण अधम हो गए हैं और उन्हें मालूम नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। जो शास्त्र के आधार पर जो शास्त्र का पालन नहीं करता है वो अधम है। बस शास्त्र जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जो शास्त्र के द्वारा नहीं चल रहे हैं, वो अधम है। तो कितने लोग हैं ये सब जानते हैं पर शास्त्र के आधार पर नहीं चल रहे हैं अपना जीवन, तो मूर्ख हैं। हालांकि वो बुद्धिमान हो पर नराधमा, क्योंकि शास्त्र के आधार पर नहीं चल रहे हैं वो अधम है। तो जिस हद तक हम शास्त्र के आधार पर, तस्मात कार्यम प्रमाणन्ते कार्य अकार्य तस्मात शास्त्रम प्रमाणन्ते, शास्त्र के जैसे हम सुन रहे थे महाराज के जामन सब गए थे, बुद्ध को भी हम मानते हैं पर स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि शास्त्र के आधार पर उन्होंने प्रचार नहीं किया, हालांकि वो भगवान है। तो वो भी अगर शास्त्र के द्वारा नहीं चलते हैं, गुरु साधु और शास्त्र, शास्त्र बहुत जरूरी है, शास्त्र के आधार पर चलना है। तो ये नराधम, तो नर में अधम का मतलब ये नहीं है कि अफ्रीकन एबोरिजिन कोई एकदम बन मानुष जैसे लग रहा हो, ऐसे नहीं। अधम मतलब एकदम सोफिस्टिकेटेड टाइवाई सब पहने हुए लोग, पर शास्त्र के आधार पर अगर नहीं चल रहे हैं, बहुत बुद्धिमान लोग कोई भी क्यों ना हो, एकदम पॉलिश्ड व्यक्ति भी क्यों ना हो, और समाज सेवक इस तरीके से बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्थिति में देखते हैं, तो ये चार प्रकार के लोग जो अगर शास्त्र के आधार पर अगर नहीं चल रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि शास्त्र की दृष्टि से ये एकदम अधम व्यक्ति है, नीच योनि का है। जो चार लाख हैं उसमें से सबसे नीच योनि है अगर शास्त्र के आधार पर नहीं चले वो। तो नराधम माया अपहृत ज्ञान, और हैं जो माया अपहृत ज्ञान, जिनको हो सकता है शास्त्र मालूम भी हो या बड़े बुद्धिमान हो, इसमें दो तरीके। एक है जिनको ये सब शास्त्र से लेना देना कुछ नहीं है, अपने इंद्रियों पर वो विश्वास करते हैं, जैसे ये वैज्ञानिक हैं, ये शरण नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, उन्हें खुद मालूम है कि ये काम नहीं कर सकता है ठीक से। बहुत सारे हमारी जो सारी इंद्रियां हैं वो भी इट कैन फंक्शन ओनली अंडर सर्टन कंडीशंस, कुछ परिस्थितियों के अंदर वो काम करता है, नहीं तो काम भी नहीं करता है। जब हम कुंभ मेला में गए थे, ठंड के मारे हाथ एकदम कुछ पता ही नहीं चलता था किस पर रखे क्या हो रहा है, तो अगर ज्यादा ठंड हो जाए तो का हाथ एकदम बर्फ जैसा बन जाता है, उसमें कुछ सेंसेशन ही नहीं होता है, क्या छू रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। इसी तरह से अगर लाइट ऑफ हो जाए तो इतने सुंदर कमल नयन होते हुए भी कुछ देख नहीं पाते हैं, आंख के अंधे नाम नयन सुख। इस तरीके से बड़े सुंदर कमलाक्षी से बड़े सुंदर नाम विशालाक्षी हो, पर अगर लाइट चला गया तो उन अक्षियों को कोई जरूरत, जैसे मोर के पंख के ऊपर आंख होते हैं उसके समान यूजलेस हो जाते हैं। और ये कान, ये भी 20,000 to 20,000 hertz साइकल्स पर सेकेंड इसके अंदर सुनाई देता है, पर इससे ज्यादा इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक हो गया तो ये कान का कोई फायदा नहीं। और कभी कभी अगर सही ज्ञान ना हो तो बाहरी रूप से कुछ सुनते हैं पर समझते कुछ और हैं। एक्चुअली स्पीच एंड हियरिंग फील्ड में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि 300 से 8000 के ऊपर भी सुनाई नहीं देता है, और जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये रेंज घटता जाता है। और इस तरीके से जो हाई फ्रीक्वेंसी वो भी सुनाई नहीं देता है। एक हमारे मित्र थे, उनके घर में किसी ने अब्रॉड फॉरेन से एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा उनके बर्थडे पर, और वो कार्ड खोलने से बहुत सुंदर एक म्यूजिक शुरू होता है, हैप्पी बर्थडे टू यू इत्यादि, बड़े सुंदर म्यूजिक है वो। तो वो बूढ़ी थी बेचारी, उसने खोला और देख के बंद करके, उसे पता ही नहीं चला कि कुछ आवाज आ रहा है क्योंकि वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पिच होता है। तो ऐसे खोली, बहुत अच्छा है, पर क्या है ऐसा कुछ, इतना मोटा कुछ अंदर में कुछ मशीन जैसा था, पता नहीं चला उसको, तो उसको फाड़ने लगी तो बच्चे ने बोला अरे कुछ आवाज आ रहा है, कुछ इसमें बहुत सुंदर, बोले क्या क्या आवाज आ रहा है मुझे नहीं मालूम। तो इस तरीके से कि हमारे जो कान भी हैं ये भी लिमिटेड हैं, और बहुत दूर या बहुत जोर हो तो उसके अंदर भी थोड़ी जो सटल डिस्क्रिमिनेशन है वो भी चला जाता है। तो इस तरीके से ये इंद्रियां भी जो थोड़ी बहुत है, और हर एक व्यक्ति ये जानता है। जैसे उसी विज्ञान में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने लिखा है कि जो बैट क्या बोलते हैं उसको तो है, वो अल्ट्रासोनिक भी सुन सकता है जो हम नहीं सुन सकते हैं। वो मानते हैं, वो खुद जानते हैं कि उनकी इंद्रियां पूर्ण काम नहीं कर सकती है, पर फिर भी वो ये नहीं स्वीकार करते कि मुझे अगर दिखा नहीं तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, अगर मेरी बुद्धि में समझ नहीं आया तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक मोहित हो गए थे। आज कोई नया वैज्ञानिक आता है, कुछ नया चीज देता है, बोले उसको समझ में नहीं था पर अभी ज्यादा समझ आ गई हमें। तो मानते हैं कि वो इतना बड़ा वैज्ञानिक था पर वो नहीं जान पाया और हम नहीं जान पाते। इस तरीके से ये हमारी कम बुद्धि का लक्षण है कि जानते हुए भी हमारी कुछ सीमा है, इस चीजों पे सीमित है हमारी इंद्रियां, फिर भी इन पर हम निर्भर होते हैं, और इनके परे जब हमको ज्ञान मिलता है तो हम इन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसी को कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। ज्ञान है पर माया द्वारा मोहित हो गई है, ये ऐसे लोग हैं। और चौथे आसुरम भावमाश्रिता, ये सब जानते हैं, सब जानते हुए, हालांकि शास्त्र भी जानते हो, पर ईर्ष्या है भगवान के प्रति। वो ईर्ष्या इतना तीव्र है कि ईर्ष्या में सब भूल जाते हैं, अगर भगवान भी सामने क्यों ना आ जाए, ईर्ष्या के कारण शरण नहीं जाते। तो ये एक मूर्खता, एक शास्त्र का नहीं पालन करना, दूसरा अपने इंद्रियों पर ज्यादा विश्वास रखना ज्ञान होते हुए भी, और चौथा ईर्ष्या। ऐसे लोग भगवान की शरण, इन लोगों को चार प्रकार के जो कम बुद्धि वाले लोग यहां बताए हैं, कि कुंती माता जो कहती है माया जमनी का अच्छन्नम मूढ़ दृशा न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, तो मूढ़ दृष्टि रखने वाले ये चार प्रकार के लोग हैं। और ये कौन, क्यों इनको मूढ़ बताया गया है, क्योंकि ये सब जानते हुए भी शरण नहीं जाते भगवान की। तो यही मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा, ये बहुत सुंदर उदाहरण है कि नटो नाट्य धरो यथा। जब नाटक में एक बहुत अच्छा नटभर अगर अपने आप को सजा के आ जाए तो, और अगर अपना ध्वनि बदल दे या अपना वेश पूरा बदल दे तो कोई पहचान नहीं पाता उसे। इस तरीके से भगवान अलग अलग रूप में, एक बार अपना मत्स्य अवतार कर लिए तो देखिए हम समझ ही नहीं पाते हैं कि व्यक्ति मन मछली कैसा बन गया, तो अपने आप को ढक लेते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं वो, हालांकि सारे रूप अपने में नित्य हैं, पर वो यहां प्रकट होते हैं अप्रकट होते हैं अलग अलग। अनंत रूपम अद्वैतम, फिर अद्वैतम है, वो अलग नहीं है एक ही है। अद्वैतम अच्युतम, सारे जो अवतार हैं वो अपने आप में अच्युत हैं, उनका कभी वो तीन गुणों से परे हैं। अनादिम अनंत रूपम, पर अनंत रूप है उनके। आद्यम पुराण पुरुषम, तो ऐसे भगवान इतने सुंदर से नाटक करते हैं, ये सब नाटक है। उनका जन्म लेना और उनका शरीर को छोड़कर चले जाना या लीला समाप्त करना, ये सब नाट्य, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो एक अच्छा है जिसको हम पहचान ही नहीं पाते, जो नहीं जानते हैं, पर जो जानते हैं वो समझ जाते हैं, आह क्या कितने सुंदर कर रहे हैं। जब यहां नाटक हुआ था, जब हृदयानंद प्रभु वहां आए जो बिरला मंदिर में हुआ था, तो बहुत लोग पहचान नहीं पाए उनको, बोल रहे थे परशुराम कौन है, परशुराम क्या आवाज है पूरा उनका आवाज ही, क्योंकि जनरली जब मंदिर में आते हैं तो इतना धीरे बोलते हैं कि किसी को सुनाई नहीं देता है, बगल में जो खड़ा रहता है उसको बस सुनाई देता है, पर वहां ऐसे पूरा ध्वनि उनका अलग था, पूरे परशुराम के मूड में थे वो, और बाल भी था इस तरीके से उनका रूप ही पूरा अलग था। तो पूरा बगल, मतलब एक रूप उनका इस तरफ अलग और उनके स्टेज पर दूसरा अलग रूप, तो हम पहचान ही नहीं पाते हैं। इस तरीके से ये परफेक्ट नाट है, इसीलिए ज्यादातर लोग उनको पहचान नहीं पाए। बहुत सारे ऐसे चीज थे जो अलग अलग थे, कभी कभी हम रोल देख के उसको देखते हैं कि ये व्यक्ति हाँ बहुत नम्र बोलता है, चलिए इसको ऐसा नम्र रोल देंगे, पर हृदयानंद प्रभु का एकदम पूरा अहंकार से भरा हुआ, जबकि इतने नम्र व्यक्ति है तो लोग पहचान ही नहीं पाए। तो इस तरीके से नटो नाट्य धरो यथा, कैसे सुंदर से एक्टिंग करते हैं, कभी कभी रोने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण के, वसुदेव मेरे पिताजी को देखो इसने मार दिया, और उसका सर लाता है जब योगी सिद्धि से, तो रोने लगते हैं भगवान रणभूमि में खड़े खड़े, और कभी कभी डर के मारे, लगता है ऐसे डर के मारे भाग जाते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते। और ये आप देखेंगे साधारण तौर पर जिनको सही तरीके से लोगों ने श्रवण नहीं किया है वो इस चीज पर मोहित हो जाते हैं, और कभी कभी जानबूझकर ऐसा काम करते हैं कुछ कि सब लोग चकित रह जाते हैं। जब अघासुर के मुंह में सारे बच्चे चले जाते हैं तो बहुत चिंतित लग जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, अभी मैं क्या करूं। तो ये नाट्य धरो, और ऐसा लीला करते हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों तक अभी भी अचिंत अनंत काल तक लोग मोहित हो जाते हैं, यही जान नहीं पाते हैं कि सचमुच में ये सिर्फ नाटक हो रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये दिव्य है। एवं योगेति तत्वतः, जो तत्व से जान लेता है कि ये सब नाटक है, पर ये सबसे परे हैं, ये सचमुच में नाटक कर रहे हैं। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन, वो तुरंत भगवत धाम जा सकता है। पर मूर्ख लोग अपने समान मानते हैं उनको, ये ही इतना ही है, मेरे समान ही है, तो ये क्यों इतना आनंद लेता है, ये भोक्ता यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हालांकि वो देखने में ऐसे हैं। यही मम भूत महेश्वरम, ये जानना जरूरी है, ये नहीं जानते हैं। तो ये सवाल उठता है कि अभी ये कैसे जाने। ये सातवें अध्याय में भगवत गीता के पूर्ण रूप से अगर भगवान को कैसे जानना चाहिए, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम, असंशयम बिना कोई संशय के समग्रम माम, पूर्ण रूप से भगवान को कैसे जाने, यथा ज्ञास्यसि तत् श्रृणु। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अगर तुम पूर्ण रूप से मय्यासक्त मना, मैं पूर्ण रूप से मेरे को हमेशा मेरे सततम मेरे मन में चिंतन करते हुए, योगम युंजन मेरी सेवा में लगते हुए, मदाश्रय मेरी आश्रय लेते हुए, बिना कोई संशय के पूर्ण रूप से समग्रम मुझे कैसे जानोगे, ये श्रुणु, तुम श्रुणु सुनो अभी। तो ये सुनना बहुत जरूरी है, जब हम सही व्यक्ति से सुनते हैं तब हम धीरे धीरे ज्ञान हो सकता है। ये नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, श्रवण से शुरू होती है। कीर्तन करने के लिए भी हमको श्रवण करना चाहिए, किसका कीर्तन करें, इतने जन्मों से हम कीर्तन करते आए हैं पर अलग अलग लोगों की कीर्ति गाते आए हैं, पर अभी अगर हम श्रवण करते हैं कि किसका कीर्ति, कौन कीर्ति के योग्य है, जैसे यहां कुंती माता कह रही है कौन एकमात्र व्यक्ति जो कीर्ति के योग है, इसका जब हम श्रवण करते हैं तब हम कीर्तन कर सकते हैं सही तरीके से। तो ज्ञास्यसि तत् श्रुणु, और उसके बाद बतलाते हैं मनुष्यानाम सहस्रेशु कश्चिद्यत सिद्धे, और फिर समझाते हैं कि कैसे भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुधिरे, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है, आत्मा जो है अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृति विधि में पराम, ये परा प्रकृति वो भी मेरी ही प्रकृति है, और एतद् योनिनि भूतानि, इनमें से जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, मत स्थानी उपधाय अहम सर्वस्य प्रभव, एतद् योनिनि भूतानि मत स्थानी उपधारय अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय तथा, अहम कृष्ण से जगत, सारा जो जगत हम देख रहे हो प्रभव प्रलय तथा, यही मैं प्रभव स्थान, मैं ही उसका सृष्टि करता हूं और सब कुछ मेरे में ही स्थित है, मत्तः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, इतने साफ साफ बताया गया है एकदम सीरीज। और इसके बाद बताते हैं त्रिवीर गुणमय भावय, ये तीन गुणों में फंसने के कारण लोग मुझे नहीं जान पाते हैं, अनुत्तमम अव्ययम मैं सबसे सर्वोत्त कैसा हूं, दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये माया से बचने के लिए मामे वे प्रपद्यन्ते, तो उनके शरण जाना। और इस खास इस श्लोक के तात्पर्य में जो नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से समझाते हैं कि भागवत के पांच श्लोक जो उन्होंने अमेरिका जाते वक्त जो लिखा था, अमेरिका जाते वक्त जो लिखे थे कि मैं वहां इस यही इन श्लोकों के आधार पर, इतना मुझे विश्वास है कि ये श्लोक ऐसा कह रहा है, तो इसी के आधार पर मैं जाके वहां उन लोगों को सिर्फ सुनाने जा रहा हूं, और बाद में आपकी, क्योंकि आप यहां निश्चय वचन देते हो कि जो व्यक्ति आपके बारे में श्रवण सुनता है वो अपनी सही ज्ञान को प्राप्त कर जाता है, वो यहां बताते हैं, श्रीमताम सुखताम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हाँ, इन द श्रीमद भागवतम दिस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कृष्णा, कैसे जाना जाए, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड चैप्टर ऑफ द फर्स्ट कैंटो एज फॉलोस। पांच श्लोक एकदम सीरीज में दिए गए हैं कि कैसे श्रवण से शुरू लेकर हम भगवान को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। श्रीमताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधु नोति सहृद सताम। तो सबसे पहले हम श्रवण करते हैं तो क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। भक्ति यानी भगवान की जो सेवा, उनको स्वीकार करके उनकी सेवा में लगना, ये निष्ठा बढ़ जाती है, और तब जैसे जैसे निष्ठा भगवान की भक्ति में हम दृढ़ता से लगते हैं तो क्या होता है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तो धीरे धीरे रजो और तमोगुण जिसके कारण काम क्रोध इत्यादि है, काम और क्रोध जो है रजोगुण समुद्भव, तो ये रजो और तमोगुण जिसके द्वारा हम इसे ढक गए हैं, ये धीरे धीरे भक्ति में लगने से ये तीन जो गुण हैं इनके परे आ जाते हैं और सत्व में, सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। तब एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। और तत्व विज्ञान धीरे धीरे आता है और संग सारे जो आसक्ति है ये धीरे धीरे हट जाता है। तब भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयः, सारा संशय जो है हमारे अंदर, जो अभी जो शंका है कि सचमुच में क्या भगवान श्री कृष्ण है, क्या सचमुच में वही भोक्ता है, क्या सचमुच भी वही सब कुछ है, ये छिद्यन्ते सर्व संशयः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, और तब हम भगवान को सही तरीके से देख सकते हैं। असंशयम समग्रम माम, यहाँ जो असंशयम है और यहाँ सर्व संशय, इसको दोहराते हैं प्रभुपाद जी कि वहां जो कह रहे हैं वही है जो वहां पांच श्लोक में कहा गया है, सिर्फ एक श्लोक में भगवान दे रहे हैं। इसीलिए भगवद्गीता जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड डोज है, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड टैबलेट, इसके एक एक श्लोक भी इतने महत्वपूर्ण है सारे संशय। ये संशय सबसे बड़ा ये है कि कैसे भगवान सब जगह भी स्थित है, पश्चिमी योग में ईश्वरम, ये योग ऐश्वर्य है भगवान कि सब कुछ मुझ में है पर इसे भी मैं परे हूं। जैसे कुंती महारानी कहती है, तुम मेरे आप मेरे भतीजे के रूप में सामने खड़े हो पर मैं जानती हूं कि तुम ऐसे मामूली व्यक्ति नहीं हो, तुम हमारे हृदय में भी बैठे हो, तुम सबके हृदय में बैठे हो और सब कुछ जानते हो, फिर भी तुम आराम ऐसे खड़े हो मानो कुछ नहीं जानते, नटो नाट्य धरो यथा, ऐसे खड़े हो पर मैं जानती हूं कि तुम सचमुच में इतने महान हो। और इस तरीके से सारा संशय, पूर्ण संशय विमुक्त होने के लिए श्रवण आदि, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, अपने इंद्रियों से हम नहीं जान सकते, सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, अगर हम भगवान की सेवा में लगे रहें दृढ़तापूर्वक, और भगवान लगने का मतलब है ये श्रवण करना, और दूसरा चीज है जो सारे पाप कर्म है जिसके द्वारा हम मोह में बंधन में फंस जाते हैं उससे मुक्त होना, ते येषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजन्ते माम दृढ़व्रता। दृढ़ता से लगने के लिए एक श्रवण करना और दूसरा कम से कम अभी से पाप कर्म नहीं करना, तो ये चार नियमों का पालन करना इसीलिए जरूरी है कि ये पाप के स्तंभ है, इसे निकाल कर और दृढ़तापूर्वक अगर श्रवण करते रहे नित्यम भागवत सेवया, तो फिर समय की बात है कि चिद्यन्ते ये सारे जो संशय हैं हट जाएंगे, और
वन ऑफ द पर्पस,
और जो कुंती महारानी यहाँ प्रार्थना कर रही है, और ये
सी दिस इज एग्जांपल इज गिवन, सपोज इन द मिलिट्री, देयर इज अ कमांडर who calls a private, who calls a sentry, and he says, you dig the hole, dig a hole in the ground, and he digs it. And then when he's walking away, he said, you fool, cover it up. Who asked you to dig it? And then he covers it up. And he said, why did you cover it? I asked you to dig it. This fellow is bewildered. Why is he instructing in different ways? But it's not that his instructions are contradictory, because the essence of all his doing all his instruction is to ultimately for him to surrender to this person. He should become obedient. The first rule in military is to be obedient to the